دن گناہوں سے ہو پاک، اصل میں ہے وہی جو دن گناہوں سے ہو پاک، اصل میں ہے وہی گناہ سے پاک دنوں اور ان شبوں کو سلام۔
عید الفطر کو کیسے منایا جائے؟ عید الفطر کا منانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ تمام عیدوں کے اندر ایک قانون بنا لیا کہ پہلی بات یہ دیکھا جائے کہ منانی ہے نہیں منانی، تو ہم نے عید الفطر منانی ہے، اس کو اللہ نے عید کا دن قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیسے منانا ہے۔ اب کیسے منانے میں پھر معاملہ دشوار یہاں پر ہے۔ کچھ لوگوں نے عید الفطر اس لیے منانا ہے کہ 30 دن جو رکاوٹیں تھیں وہ ساری رکاوٹیں اب ختم ہو گئی ہیں۔ اگر 30 دن تک کوئی سوسائٹی کا پریشر تھا، 30 دن تک محلے والے کچھ پوچھتے تھے، بڑا عجیب منظر تھا۔ ابھی میں جب یہاں پہ آ رہا تھا تو میں ہمیشہ گاڑی کو آگے والی گلی سے نکال کے لاتا ہوں، وہاں پہ ایک مسجد ہے تو وہاں پہ ہر روز رش ہوتا تھا۔ ابھی آج میں گزر رہا تھا وہاں سے تو وہاں سارے جو ان کے مسجد کے خادم خدام ہوں گے وہ بےچارے سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، پوری گلی خالی، کوئی نہ آدم نہ آدمزاد۔ تو میں سوچ رہا تھا ایسا لگ رہا ہے جیسے بعض تعلیمی اداروں میں چھٹی کے دن خادم باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا سب کو کہنے کے لیے، آج چھٹی ہے، تو لگ رہا ہے آج دین کی چھٹی ہو گئی۔ 30 دن دین کا کام خوب چمکا ہوا تھا، آج دین کی چھٹی ہو گئی ہے، اب یہ بےچارے بیٹھے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھائی آج کچھ نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ ہوگا، جیسے عید الفطر آئے گی لوگ کہیں گے وہ 30 دن تک جو دین نے بزی رکھا ہوا تھا اب دین نے چھٹی دے دی ہے۔ دین نے چھٹی دی کیا مطلب؟ اب جو کرنا ہے کر لو۔ کم از کم کیا کرے گا؟ کم از کم یہ کرے گا کوئی نہ کوئی میوزک سنے گا۔ کچھ جوان جن کو بیچاروں کو میوزک کا کریز ہوا ہوا ہوتا ہے تو 30 دن تک انہوں نے کہیں اماں ابا کے کہنے پر کسی کے کہنے پر اپنے آپ کو روکا ہوا ہوتا ہے۔ اب عید کا جو دن آتا ہے تو کہتا ہے بھائی اب تو عید کا دن ہے نا، اب یہ نہیں سوچتا یہ عید کا دن ہے کیوں، کیوں رکھا پروردگار عالم نے۔ ابھی دعائے ودائے رمضان آج رات توفیق حاصل فرمائیے، صحیفہ سجادیہ میں جا کے دیکھیے، اسے پڑھیے، چند جملات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اس میں جا کے دیکھیں تو مولانا نے ایک جملہ استعمال کیا تھا اور ماہ رمضان کے لیے کہا تھا کہ اے دوستان خدا کی عید۔ مولانا نے ماہ رمضان کو دوستان خدا کی عید تعبیر کیا تھا۔ بس یہ جو عید کا دن ہے وہ کس بات کے لیے عید کا دن ہے؟ بہت سادہ سے کلام میں اہل بیت سے نقل ہوا، بیان ہوا، فرمایا کہ یہ عید کا دن اس بات کے شکر گزاری کا دن ہے کہ خدا تو نے ہمیں 30 دن عبادتیں کرنے کی توفیق دے دی۔ اب میں خدا کا شکر بجا لاؤں تو وہ کیسے بجا لاؤں؟ آپ شکر بجا لائیے، جس سے خدا خوش ہو اس طرح سے شکر بجا لائیے، جس طرح سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ خدا خوش ہوگا اس طرح سے خدا کا شکر بجا لائیے۔ آسان طریقہ کار کیا ہے؟ ایسے کام سوچ لیجئے جو خدا کی خوشی کی خاطر ہونے چاہیے تھے اور معمولاً عام دنوں میں نہیں ہو پاتے، اسے عید کے دن کے لیے کر لیجئے۔ مثلاً عام دنوں میں عائزہ اور اقربا سے ملنے کا موقع نہیں ملتا، عید کا دن بہت اچھا دن ہے، عائزہ اور اقربا سے ملیے۔ مثلاً ایک اچھی رسم بعض خاندانوں کے اندر ہے، عید کے دن قبرستان جاتے ہیں، صبح میں، شام میں، اگلے دن، ایک دن، دو دن چھوڑ کر۔ ہمارے شہید فاؤنڈیشن کے ادارے نے بڑا اچھا ایک کام کیا ہوا ہے، ہر عید پر ہر شہید کی قبر پہ جا کے گلدستہ رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کے بچے متعلقین آئیں اپنے شہید کی قبر پر تو پہلے سے گلدستہ رکھا ہوا ہوتا ہے، پھولوں کا گلدستہ، تو بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ مثلاً کوئی پہنچا بچہ اپنے باپ کی قبر پہ تو اس نے دیکھا کہ پہلے سے کسی نے میرے باپ کے لیے نام کو وہاں پہ صاف ستھرا کیا ہوا ہے، گلدستہ رکھا ہوا ہے۔ اس طرح کے چند کام بہت اچھے کیے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ اس طرح کا کوئی کام نکالیے، مثلا عید کے دن میں اس طرح کا کوئی کام دیکھ لیجئے کہ جو عام دنوں میں نہیں ہو پاتا اس کو کرنے کی کوشش کر لیجئے۔ وہ سب سے اچھا کام جو عید کے دنوں کے اندر مثلا ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم اور آپ سارے وقت ہی اپنی خوشی کے لیے کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں۔ عید کا دن رکھیے دوسروں کو خوش کرنے کا، سوچیے دوسروں کو کیسے خوش کیا جا سکتا ہے۔ اب دوسروں کے خوش کرنے میں سب سے پہلے خود آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، اپنے خاندان والوں کو خوش کیجیے، اپنے اہل خانہ کو خوش کیجیے کسی طریقے سے۔ اگر ہر روز موڈ خراب رہتا ہے عید کے دن ذرا سا موڈ ہلکا کر لیجیے بھائی۔ بعض اوقات یقین مانیے ایسی ایسی کہانیاں سنتا ہوں نا میرا دل بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ ابھی کسی نے چند گھنٹے پہلے کسی خاتون نے مجھے سنایا، بیچاری کو گھر سے نکال کر بھیج دیا اپنے گھر پہ، عید کے دن سے دو دن پہلے یہ حرکت کی۔ کیا انصاف ہے؟ کن باتوں پہ جھگڑتے ہیں؟ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑتے ہیں، انسان سن کے کہتا ہے یہ ابھی تک بچے ہیں، ابھی بڑے نہیں ہوئے، عقل نہیں آئی ان کو۔ और बेचारी सुना रही है कि जनाब मार पीट भी करते हैं और गालियां भी देते हैं और ये भी करते हैं वो भी करते हैं। अब वही वन साइडेड स्टोरी, दूसरी तरफ भी सुनना पड़ेगा, लेकिन अगर ये रियलिटी है इंतहाई अफसोसनाक है। क्या हो रहा है माशर के अंदर, इतना कुछ दीन के लिए बात हो रही है, मसलन मस्जिदें भरी हुई हैं, दुरूस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर माशरे के अंदर फिर वही मुसीबत वहीं की वहीं खड़ी हो तो बड़ा दिल कोड़ता है। इसके ऊपर अपने ऊपर देखना चाहिए, मसलन ये ईद का दिन है, सबसे पहले कोशिश करें अपने अहले खाना को खुश करें, अपने बच्चों को खुश करें। ईदी देने की रस्म बुरी नहीं है, ईदी देने की रस्म अच्छी है, लेकिन वो जो मुकाबले में शुरू हो जाती है वो बहुत बुरी है। ये जो हर चीज़ के अंदर हमारा कंपटीशन आ जाता है वो बहुत बुरी चीज़ है। ईदी देना अच्छा है, हम मुझे याद है जब पहली दफ़ा हम ईरान में थे, पहली ईदी आई तो हमारे मदरसे के प्रिंसिपल, उनके वालिद भी हयात थे, वो माशाल्लाह बड़ा अजीब खानदान था, सैयद खानदान था, और चार नस्लें एट अ टाइम जिंदा थी, चार नस्लें माशाल्लाह, और सब के सब आलिम, यानी वो जो बच्चा पैदा हुआ था वो तो क्या ही होता, पीछे सारी नस्लें आलिम आ रही थी कई नस्लों से। तो जनाब अली उनका पोत पड़पोता, उनका पोता, उनके बेटे खुद प्रिंसिपल, और वो जो बड़े बुजुर्ग वो तो वो भी हयात, और हमने खुद देखा कि उनके बेटे के पाँव में दर्द होता था तो वो चल नहीं पाता था, और वो बड़े मियाँ माशाल्लाह खूब पूरी तवानाई के साथ इधर उधर चल रहे होते थे, आगे पीछे जा रहे होते थे, और बड़ी मानवीय रूहानी शख्सियत थी माशाल्लाह। तशरीफ लाए मदरसे के अंदर, ईद का दिन था, सब बड़े खुश हुए कि जनाब बुजुर्ग हस्ती तशरीफ लाए। वो आए बैठे और लोगों ने बताया जो पुराने लोग थे, कहेंगे ईदी देते हैं ये। हमने कहा अच्छा भाई बड़ी अच्छी बात है यार, कोई बुजुर्गों से ईदी मिलेगी। बहुत खूबसूरत तरीक़ेकार उन्होंने इख्तियार किया, पाँच तुमान के सिक्के लिए, उस ज़माने में पाँच तुमान की कोई हैसियत नहीं थी, आज तो खैर बिल्कुल ही कोई हैसियत नहीं है, एक रुपए के 15 तुमान मेरे ख्याल में मिल रहे हैं आजकल। तो वो पाँच तुमान के सिक्के उन्होंने बहुत ढेर सारे लाए थे अपने अपने साथ, वो ढेर सारे सिक्के लेके उन्होंने वो यूं करके बैठ गए और मदरसे के बच्चों से कहा कि एक एक आदमी गुजरता रहे, एक एक सिक्का उठाता रहे अपनी ईदी के तौर पर, और वो इतनी देर तक बेचारे यूँ हाथ फैलाए बैठे रहे और सब लोगों को इस तरह से उन्होंने नफासत के साथ ईदी दी। यानी ईदी देने में भी उन्होंने अपना हाथ ऊपर नहीं रखा, बल्कि उसमें भी अपना हाथ उन्होंने नीचे रखा। बड़ा खूबसूरत लगा मुझे कि माशाल्लाह क्या तरीक़ेकार है, इसमें उसमें भी उन्होंने अपनी तवाज़ो का ख्याल रखा, मदरसे के तुल्लाब की एक इज्जत और रिस्पेक्ट उन्होंने उसके अंदर बचा के रखी। एक और बात ये कहना चाहूँगा कि मसलन ईद के तीन दिनों में आप मुख्तलिफ लोगों के घर पर जाएंगे, जो रूटीन होता है, मसलन मैं अपनी वालदा के घर जाऊँगा, मुमकिन कोई मेरे घर आए, फिर मैं किसी के घर पर जाऊँ, दो तीन दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कम से कम एक घर ऐसे जाइए जहां आप अपनी वजह से ना जा रहे हो, खुदा की वजह से जा रहे हो। एक घर को ऐसा पकड़ लें जिसमें आप अपनी वजह से ना जाते हो, मसलन मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई, मेरी बहन, ये सब नहीं है, खुदा के किसी हुक्म की वजह से जा रहे हैं। मसलन मशवरे के तौर पे कहूंगा किसी एक शहीद के घर पे जाइए, कोई एक शहीद, अभी तो देखो शहादतों का सिलसिला रुका हुआ है ना, तो थोड़ा सा मामला नरम पड़ गया है, लोगों के जहन में निकल गया है कि मैं भी लाइन में हो सकता हूँ। जब बारी चल रही होती है ना, फिर सबको याद रहता है कि हाँ यार मेरी बारी भी आ सकती है। तो एक किसी शहीद के घर पर जाइए, सुन्नत बना लीजिए अपनी के ईद के तीन दिनों में एक दफ़ा कहीं ना कहीं किसी शहीद के घर जाएंगे, बच्चों पर मिलिए। लिखा है मिसाल हमारे पास रिवायतों में लिखा है कि किसी एक यतीम के सर के ऊपर आप एक दफ़ा अगर अल्लाह की रजायत की खातिर हाथ फेरें तो जितने हाथ के नीचे बाल आते चले जाएंगे उन तमाम के तादाद के मुताबिक खुदा आपके गुनाहों को माफ़ करेगा। डेलीबरेटली जाएँ, किसी शहीद के घर जाएँ, किसी शहीद के घर जाएं, या अपने किसी ऐसे मिस्कीन रिश्तेदार के घर चले जाएं जिसके यहाँ कोई नहीं जाएगा, मालूम है कि वहाँ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि लोग भी तो ऐसे हो गए ना, खानदान में सब उसके यहाँ जमा होते हैं जिसके पास थोड़ा सा देखते हैं कि हाँ यार जरा सा मकाम है, ठीक है, और वरना अगर कोई बेचारा दरमानदा हो, इधर उधर का मारा मुरा हो, तो वही इधर उधर जाता रहेगा, कोई उसके घर फटकने की कोशिश नहीं करेगा। नहीं तो आप चले जाइए, उसको हिम्मत अफजाई होगी, बच्चे उसके खुश होंगे, आप जाइए। हाँ जाकर कुछ और हरकतें ना कीजिएगा, मसलन ना आपके सामने पानी उसने रखा, आपने कहा मिनरल वाटर है, अब वो बेचारा मारा गया कि उसने कहा यार मैं तो यही पानी पीता था भाई, अब ये मिनरल वाटर कहाँ से लाऊं इसके लिए, या आपके बच्चों ने जाके चीखना शुरू कर दिया कि यहाँ ऑलरेडी बहुत गर्मी हो रही है यहाँ से फ़ौरन चले, ऐसी कोई हरकत ना हो जाए, पहले से बच्चों को समझा के लेके जाएंगे भाई जरा बर्दाश्त कर लेना। तो कोशिश करें माशरे में मिलने की कोशिश करें, अलहदा रहने की कोशिश नहीं करें, जिनको माशी जिंदगी ने तंग किया हुआ है उनकी जिंदगी में सुकून देने की कोशिश कीजिए। इस तरह छोटी छोटी खुशियां लोगों के अंदर फैलाने की कोशिश कीजिए इंशाअल्लाह। और जिससे भी ईदी मिले उसूल बना लें, दिल से मिले, दिल से मिले। अब हर चीज रस्म का शिकार हो गई है ना, तो वो गले मिलना भी रस्म का शिकार हो गया। इस गले मिलने में खुलूस से मिलिए, दिल से मिलिए, और अनजानों से भी मिलिए, अनजानों से भी मिलिए। हमें तो एक जबरी मिलना होता है ना, वो कभी जब नमाज पढ़ने जाता हूँ बच्चे साथ जाते हैं तो पीछे काउंट करते रहते हैं बाबा ने कितने लोगों से गले मिले, तो कभी बताते हैं आकर कहता है बाबा 100 हो चुका है, अब और क्या इरादा है। तो एक दफा गिनता था 230 तक बात चली गई। तो अजनबी लोगों से मिलने में एक फायदा है, नहीं मालूम कौन सा अल्लाह का फरिश्ता है, नहीं मालूम कौन सा मोमिन है। अच्छा एक और मुश्किल भी है, यही मुश्किल क्या आसानी क्या सभी दोस्तों से, नहीं मालूम शायद मौला भी है इसके अंदर, नहीं मालूम, क्योंकि हमारे पास रिवायतें मौजूद हैं कि जब मौला तशरीफ लाएंगे तो लोग देखते ही कहेंगे कि इनको हमने पहले देखा था। तो मैं सोचता हूँ नहीं मालूम, मसलन मैं 200 आदमियों को गले लगा रहा हूँ, मुमकिन है एक मौला के साथ भी हो, दिल से मिलूँ, ऐसा ना हो कि मौला से जिस वक्त गले लगाए तो इतना ऑड हो गया, इतना रफली लगाए कि पता ही नहीं चला, कि बाद में अफसोस भी करना पड़े कि भाई क्या मुसीबत हमने कर दी, दिल से मिले। इंशाअल्लाह ईद की खुशियों में सबको शरीक कीजिए, अपने आप को भी खुश रखिए, अपने आप को भी खुश रखिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, रकाबत से गुरेज करें, किसी किस्म की मादा परस्ताना रकाबत के अंदर मुब्तला होने की कोशिश ना कीजिएगा कि जो जिसके अंदर हम लोग मामूली मुब्तला हो जाते हैं। इस ईद को कुछ बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, इस्लाम की मुसीबतों को भी याद रखिए अपने जहन के अंदर, खुशियाँ मनाइए। मैं कभी ये नहीं कहूँगा खुशियाँ ना मनाई जाएँ, खुशियाँ नहीं मनाएंगे फिर कहीं जाकर गुनाह में खुशी मनाएगा, नहीं सवाब में खुशी मनाए इंसान। मुश्किलात को भी जहन में रखें कि हाँ ठीक है दुनिया भर के अंदर मुसलमान मुश्किलात झेल रहे हैं, इराक़ के मुसलमान मुश्किलात झेल रहे हैं, इन तमाम को भी कहीं ना कहीं अपने जहन के अंदर रखिए। इंशाअल्लाह तमाम जगहों पर जहाँ कहीं भी जाएँ, चाहे किसी के घर जाएँ, चाहे कोई आपसे मिलने आए, कहीं ना कहीं मौका निकाल कर दुआ सलामती इमाम ज़माना पढ़ लें, कहीं ना कहीं मौका निकाल कर एक ये दुआ पढ़ लें, कहीं ना कहीं मौका निकाल कर अपने इमाम का तस्करा कर लें, अपने इमाम का जिक्र कसरत के साथ करें, उनके जहूर की ताजील के लिए दुआ कसरत के साथ करें। आयतुल्ला बहजत से किसी ने पूछा, क्योंकि उनके बारे में उनकी मानवियत पर लोगों को बहुत यकीन है और ज़ाहिरन है भी ऐसा ही, अजीब बामानवियत शख्सियत है, उनसे किसी ने पूछा कि मसलन ये इशारा करते हुए कि मसलन आपके आपकी मारिफत है माशाल्लाह ये है वो है, क्या करना चाहिए इमाम के लिए, तो कहने लगे कि ताजील जहूर के लिए बहुत दुआ करनी चाहिए। वो तो पूछने वाले ने कहा कि ये दुआ कैसे करनी चाहिए, कहने लगे जैसे मर्जी, जैसे तुम लोग जानते हो वैसे करो, लेकिन ये दुआ बहुत ज़्यादा करो। अब पता नहीं इसमें राज क्या है, खुद भी वो जो मैं इंटरव्यू उनका पढ़ रहा था तो देखा कि वो कुछ बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहे कि इसमें राज क्या है कि हमारी दुआ करने से क्या हो जाएगा, लेकिन कहा कि कसरत के साथ दुआ करें। तो आप जहाँ कहीं रिश्तेदार मिले वहाँ पर इमाम के वजूद का तस्करा करें, कुछ ना कुछ उनके बारे में दो चार जुमलात आप बोल दें, सामने वाला सुन ले। हमारी और आपकी महफिलों में हमारे इमाम का तस्करा ज़रूर होना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से, किसी दुरूद के नाम पर, दुआ सलामती के नाम पर, मुख्तलिफ तरीक़ों से इमाम के वजूद मुक़दस का तस्करा होना चाहिए, कि उनके जिक्र से इंशाअल्लाह नूरानियत भी है, उनके जिक्र से हमारी वजीफे की अदायगी भी है और हमारी खुशियों का दुबाला होना भी है। तो हम आखिर में फिर हम भी कोशिश करते हैं कि अपने मौला का तस्करा करें। हमेशा जहन में रखिएगा गैबत एक सज़ा है, गैबत एक सज़ा है, असल ज़िंदगी वो है जो हुज्जत के साथ गुजारी जाएगी, असली ज़िंदगी वही ज़िंदगी है जो हुज्जत के साथ गुजारी जाए, हुज्जत की याद में गुजारी जाए। तो ज़िंदगियों को रुख दे दें अपने इमाम के वजूद की समत, कि हमें इमाम का वजूद चाहिए। ईद का चांद आपने शायद देखा नहीं देखा, दुआ की या नहीं की, लेकिन जब भी ऐसा कोई मौका है खुशी का, खुदा से कहिए कि खुदाया खुशी वो है जो तेरे नुमाइंदे के साथ होगी, बाकी खुशियाँ कम खुशियाँ हैं, उनके आने की खुशी सबसे बड़ी खुशी है, उनके साथ सख्ती झेलने ये भी खुशी है। आयतुल्ला अहमदी मियां जी बड़े पाए के इल्म अखलाक के उस्ताद थे, बहुत बड़े बड़े उलमा उनके दर्स में बैठते थे, बाजार में दर्स दिया करते थे, बाजार में एक मस्जिद थी छोटी सी उसमें दर्स देते थे, तो बड़े बड़े उलमा उसमें आते थे। एक दफ़ा मदरसे तशरीफ लाए, इनकलाब इस्लामी की सालगिरह का दिन था, जिस दिन इनकलाब आया था ईरान का, तो वो तशरीफ लाए, उसमें उन्होंने एक जुमला कहा, वो मुझे जुमला बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत जुमला कहा, कहने लगे कि वो दिन बहुत अच्छे थे। अच्छा वो बहुत आगे आगे चलने वाले उलमा में से थे जिन्होंने सख्तियाँ भी बहुत उठाई थी, आगे आगे रहने वाले उलमा में से थे, कहने लगे वो दिन बहुत अच्छे दिन थे। और फारसी में कहते हैं तल्ख बूत शीरें बूत, तल्ख यानी सख्त भी थे, मसलन तल्ख यानी लहजे में तल्ख थे, शीरें भी थे, फिर कहने लगे तल्ख शम शीरें बूत, उसका तल्ख भी शीरी था, उसकी मुसीबतें भी अच्छी थी बहुत। फिर एक वाक्य सुनाया उन्होंने, बल लगे हाथों उनकी याद में ये वाक्य सुना दूँ, कहने लगे कि वो बड़ी शदीद फायरिंग हो रही थी एक रात, पुलिस और जवानों के दरमियान बड़ी ज़बरदस्त टसल चल रही थी, इनकलाब अपने आखिरी दिनों के अंदर था, आने ही वाला था और आखिरी मारका हो रहा था। तो कहने लगे कि हम बाजार में थे, वो जवान हमारे सामने पुलिस से लड़ रहे थे, फौज से, और ये और वो, कहीं कोई ज़ख्मी कहीं कोई ज़ख्मी, तो एक औरत को देखा, कहने लगे मैंने एक बुढ़िया को देखा, वो टेलीफोन बूथ के बराबर खड़ी हुई थी। तो कहने लगे मैं उस औरत के पास आया, اور اس سے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے آپ کے یہاں پہ ہونے کا، آپ جائیے کہیں پر. آپ کو ٹیلی فون بوتھ کے ساتھ کھڑا دیکھ کر مجھے بہت تعجب ہوا کہ اتنی فائرنگ ہو رہی ہے، اتنی آگ ہلاؤ جلاؤ گھیراؤ ہو رہا ہے، اس میں آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ کہنے لگی کہ میں ٹیلی فون بوتھ کے سامنے سکے لے کے کھڑی ہوں، اور ایک ایک جوان کو گزرتے ہوئے کہتی تھی سکہ لے لو گھر، فون کر دو کہ زندہ ہو، تمہاری ماں پریشان ہو رہی ہو. اس جذبے نے واقعا زندگیاں تبدیل کی، یہ جذبہ تھا. وہ عورت اپنی جان خطرے میں ڈالی بھی ہے تو اس نے کہا آپ کا بچہ کا ہے؟ کہنے لگی میں منتظر ہوں، میں منتظر ہوں، مجھے پتا ہے وہ صحیح ہوگا. یہ جذبہ ہے. وہ عورت اپنے بچے کو بھلا کر دوسری ماؤں کے درد کو احساس کرتے ہوئے بازار میں کھڑی ہے اور سکہ دے رہی ہے بچوں کو کہ گھر کو فون کر لو اور بتا دو کہ زندہ ہو، خیریت سے ہو. اس جذبے کو ہمارے اندر زندہ ہونا چاہیے اپنے قوم کے افراد کے لیے، اپنے امام کی نصرت کے لیے. انشاءاللہ خدا ہماری ہر دن کو اگر اس جذبے کے ساتھ ہوگا تو عید کا دن قرار دے گا.